इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी।
मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है ओ माँ तेरी दुआओं की बदौलत है। मुकम्मल हो पाए हैं जो सपने मेरे तेरे प्यार और भरोसे की मुझ पर बरकत है। जब तू साथ है मेरे तो क्यों डर के जीऊँ मैं। जिंदगी के जख्मों का प्याला हंस हंस कर पी लूँ मैं। मेरी मंजिल से मुझे दूर कर दे अब ना किसी में इतनी ताकत है। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है ओ माँ तेरी दुआओं की बदौलत है। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जान की कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, कहते हैं संग का रंग बहुत मजबूती से चढ़ता है। जिसको कितना भी मिटाने की कोशिश की जाए परंतु अपना असर छोड़ ही जाता है। अब ज़रा सोचिए कितनी भाग्यशाली होंगी वो आत्माएं जिनको दादी जानकी जी जैसी महान और तेजस्वी आत्मा का साथ और परवरिश प्राप्त हुई होगी। आज हम आपका परिचय कराना चाहते हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रवीणा बहन जी से, जो उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हैं जिन्हें दादी जी के साथ उनके अंग संग रहने का, उन्हें संभालने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं प्रवीणा बहन जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। प्रवीणा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति।
ओम शांति।
सबसे पहले हम दादी जी के बारे में जाने, उससे पहले हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि आप कैसे संस्था के संपर्क में आए और कैसे आपने डिसाइड किया कि आप समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं देंगे, तो ये उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं।
1981 में
जी
मैंने 12वीं की एग्जाम देकर के जब मैं घर आई तो हमारे घर में ही गीता पाठशाला शुरू हो चुकी थी
जी।
और मम्मी पापा क्लास में, सेंटर से बहनें आती थी और क्लास में सभी बैठते थे। घर में जो भी मेंबर्स होते थे, आजू बाजू के भी लोग आते थे। तो उसी दिन सेंटर से बहन आए हुए थे और सैटरडे का दिन था तो हम भी क्लास में बैठे और पहले ही दिन बहन ने मुरली सुनाई तो बहुत अच्छा लगा
जी।
और फिर तो घर में ही क्लास थी तो कोई बहानाबाजी तो नहीं चलती थी।
हाँ।
सभी को सत्संग में बैठना ही होता था
जी, जी।
तो ऐसे ही शुरुआत ऐसे हो गई, पता भी नहीं चला। लेकिन जिस दिन मुरली सुनी, पहली मुरली, उससे बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि सही गीता का ज्ञान तो यही है। क्योंकि हमारे घर में बचपन से हम लोगों को गीता पढ़नी होती थी।
हाँ।
समझ में आवे या ना आवे लेकिन हर एक गीता पढ़ता था, सुनता था। लेकिन ऐसे ही हमने शुरुआत की मुरली से ही। बाकी मैंने कभी 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। ज्ञान को जो भी समझा है बाबा की मुरली से ही समझा है। तो बहुत ही सहज तरीके से
तो
हम ज्ञान में आ गए।
होने का आपने मतलब कैसे निर्णय लिया?
समर्पित तो बाद में हुए, पहले मैंने मेरी पढ़ाई पूरी किया।
हाँ।
मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लिया। लेकिन हर वैकेशन में मधुबन आते थे।
हाँ।
तो बड़ी दादी के बहुत हम करीब थे।
हाँ।
दादी प्रकाशमणि के। और दादी जी हमें बार बार यही कहती थी कि आप अभी पढ़ाई पूरी हुई है तो सेंटर पर जाओ
जी,
लेकिन तब मैं रेडी नहीं थी। तो घर जा कर के मैंने एमकॉम करना शुरू किया। एक साल एमकॉम फर्स्ट ईयर किया, लेकिन उस समय हमारी एग्जाम बहुत डिले हो गई, लगभग 6 महीना डिले हो गई। तो मेरा एग्जाम डिले हो गया। और मैं एक्चुअली एग्जाम मेरे को सूरत में देना था, लेकिन सूरत के बजाय हमारी एग्जाम अहमदाबाद में ली गई। और फिर अहमदाबाद में एग्जाम देने के बाद मैं तुरंत मधुबन आई। और दादी जी उस समय ऑस्ट्रेलिया की टूर करके आए थे। तो हमें बताया कि दादी का बहुत भव्य स्वागत होने वाला है, तो आप भी जाओ, एग्जाम पूरी हो गई है। तो हम अहमदाबाद से मधुबन आए, वही दादी जी के साथ ट्रेन में आए।
अच्छा।
और दादी को तो ये पता था कि ये मछली पकड़ में नहीं आ रही है। तो दादी बार बार कहती, अच्छा अभी कितना पढ़ाई करनी है। मैंने कहा, दादी देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मधुबन आए, तो 2-3 दिन के बाद मुझे एक क्लास पढ़ने को दिया। और वो क्लास की हेडिंग थी, पढ़ो लिखो कुछ भी करो, लेकिन मुझे जवाब दो कल किसने देखा। ये बड़ी दादी ने कन्याओं की भट्टी में क्लास कराई थी। और ये क्लास की जो हेडिंग थी वो मेरे दिल को एकदम टच कर गई। और क्लास पढ़ने के बाद मैं दादी जी के पास गई कि दादी मैं रेडी हूँ सेंटर पर जाने के लिए। तो फिर दादी कहती, नहीं अभी पढ़ाई शुरू किया है तो पढ़ाई पूरी कर। मैंने कहा, नहीं दादी, मैंने आपको कहा था कि जिस दिन मुझे प्रेरणा आएगी मैं किसी को पूछने नहीं जाऊंगी, आप मुझे सेंटर पर भेजो। तब भी दादी ने मुझे कहा कि नहीं, घर जाओ, माँ बाप की छुट्टी लो, आपकी टीचर की छुट्टी लो, फिर आओ मधुबन। तो ऐसे मैं घर गई। घर में माँ बाप से बात किया कि मैं ऐसे 2 महीना जाना चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं एकदम बता दूँ कि मैं परमानेंट जाना चाहती हूँ तो शायद तैयार नहीं होंगे
जी।
तो मैंने 2 महीने की बात कही तो वो लोग तैयार हो गए कि ओके जाओ। और हमारी दीदी से भी बात किया, तो सेंटर सूरत की दीदी लता दीदी थी। तो दीदी को बताया, तो दीदी ने कहा कि मैं ही जाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ ही चलो। तो हम मधुबन आए दीदी के साथ और दादी जी को बताया कि दादी ऐसे मैं तैयार हूँ सेंटर पर जाने के लिए। तो दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, दादी सोचती हैं कि कहाँ आपको भेजना है।
अच्छा।
तो ऐसे करके दादी ने मुझे कहा कि मैं बताऊंगी, लेकिन मधुबन में कॉन्फ्रेंसेस होती है ना
जी।
ये 1985 की बात है। कि कॉन्फ्रेंस होती है 83 से। तो आप कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है, तो आप कॉन्फ्रेंस तक रुको, फिर मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम हर वैकेशन में मधुबन आते थे, तो हम बहुत यूज टू थे मधुबन से। लेकिन फिर अचानक एक दिन दादी कहती हैं कि प्रवीणा, दादी जानकी आ रही हैं।
अच्छा।
क्या आप दादी जानकी के साथ रहोगी?
अच्छा।
तो मैं अपने आप को बहुत,
उससे पहले आप दादी को जानते थे, दादी जानकी से मिले थे?
नहीं, उसके पहले मैं एक बार मधुबन में जरूर मिली थी। ऐसे बिना सीजन में दादी आई थी यहाँ। हाँ, तो मैं मिली थी एक बार। क्योंकि हमारा लंदन से कनेक्शन बहुत रहा।
ओके।
क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिली लंदन में ज्ञान में आई।
अच्छा।
और मेरे माँ बाप भी लंदन गए थे, तो इसी वजह से दादी मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे।
अच्छा।
क्योंकि हमें ज्ञान भी लंदन के थ्रू ही मिला। क्योंकि मेरे चाचा चाची जब लंदन में ज्ञान में आए, तो वो लोग जब भारत में आए तो वहाँ से ही टीचर बहन को लेकर के आई और यहाँ कोर्स करवाया। तब तो मैं हॉस्टल में थी, तो मैंने कोर्स नहीं किया था। लेकिन ऐसे ही दादी मेरी फैमिली को अच्छे से जानते थे। तो और मेरे चाचा चाची जब भी लंदन से आते थे, तो वो लोग दादी के क्लासेस लेके आया करते थे। तो वो क्लासेस मुझे पढ़ने के लिए देते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझे ज्ञान में इंटरेस्ट है। तो वो क्लासेस मैंने पढ़ करके, वो लोग जब वापस जा रहे थे, तो दादी जानकी को मैंने पत्र लिखा था। मैं उसको जानती नहीं थी, ना उसका फोटो देखा था। लेकिन मैंने दादी को लिखा था कि दादी, इस प्रकार की क्लासेस यदि मुझे मिलती रहेगी, तो शायद एक दिन मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी।
अच्छा।
अभी दादी को तो ये बात थोड़ी याद रहती, लेकिन मुझे याद है। और 1982 में दादी सूरत आए थे, तभी भी दादी हमारे घर भी आए। और संजोग ऐसा था कि मेरे घर में मेरे भाई और मेरे बहन की शादी होने वाली थी 2 दिन के बाद।
अच्छा।
और फिर भी हम उन दादी के प्रोग्राम में पूरा अटेंड किया और दादी हमारे घर भी आए। तो दादी ने फिर मेरे से पूछा कि क्या तुम भी शादी करेगी? तो मैंने कहा नहीं दादी। तो कहती दादी को प्रॉमिस करती हो? तो मैंने कहा जी दादी, मैं बाबा की हूँ और बाबा की ही रहूँगी। तो ये उस समय हमारी पहली मुलाकात थी दादी के साथ। और दादी ने इस प्रकार से मेरे से बात की थी।
फिर जैसे आपने दादी प्रकाशमणि जी के कहने के बाद दादी जानकी के साथ तुरंत रहना शुरू किया था।
एक्चुअली दादी के साथ 2 दिन के बाद, 2 दिन तक मैं गई नहीं दादी जानकी के पास।
हाँ।
तो 2 दिन के बाद दादी ने मुझे पूछा कि प्रवीणा दादी जानकी के पास गई थी?
हाँ।
तो मैंने कहा दादी मैं ऐसे कैसे जाऊँ, आप मेरा परिचय कराएंगे उसके बाद मैं जाऊँ ना दादी के पास। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है, आप आंगन में रहना, दोपहर को हम भोजन करके बाहर निकलते हैं ना, तब मैं आपका परिचय कराऊंगी।
हाँ।
तो दादी, दोनों दादियां बाहर आए और दादी ने मुझे बुलाया कि प्रवीणा इधर आओ। तो मैं गई। तो दादी मेरा हाथ लेकर के दादी जानकी के हाथ में देती है।
अच्छा।
और दादी कहती हैं कि दादी ये बाल की मैं आपको देती हूँ, इसको आप ब्रह्मा कुमारी बनाएंगी। तो दादी जानकी कहती दादी ये ब्रह्मा कुमारी तो ऑलरेडी है। कहती अभी तक तो नहीं है, तुम इसको ब्रह्मा कुमारी बनाएंगी। तो दादी जानकी के पास इस प्रकार से मेरा जाना हुआ।
फिर मतलब दादी के साथ फिर आप लंदन चले गए?
ना, लंदन नहीं गई।
हाँ।
दादी जानकी जब जब मधुबन आती थी तो मुझे बड़ी दादी मैसेज भेजते थे और मैं आ जाती थी। तो शुरुआत के 10 साल मैं दादी आती थी तो दादी के साथ रहती थी, फिर दादी जब लंदन चली जाती थी तो मैं बड़ी दादी जहाँ भेजती थी वहाँ मैं जाती थी।
अच्छा।
तो इस प्रकार से मैं गुजरात में 2-3 सेंटर पर गई। और फिर बाद में अचानक एक दिन दादी जानकी ने मुझे कहा कि आप अपनी वीज़ा निकलवाओ।
अच्छा।
क्योंकि दादी को पता था कि मेरी सारी फैमिली लंदन में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। तो दादी ने कहा दोनों वीज़ा निकलवाओ। और उस समय वीज़ा बहुत दिक्कत होती थी, वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल भी था।
हाँ।
और पटेल लोगों को तो वैसे भी नहीं मिलती है वीज़ा, क्योंकि वहाँ जा कर के बस जाते हैं इसलिए भी। लेकिन मुझे बहुत क्वेश्चंस करने के बाद वीज़ा मिली।
हाँ।
और जिस समय 6 महीने की वीज़ा मिलती है अमेरिका की, मुझे 1 साल की मिली थी। और लंदन की भी बहुत सहज वीज़ा मिल गई थी। तो फिर लंदन आना जाना शुरू हुआ।
हाँ।
तो दादी जब लंदन जाते थे तो मैं उसके साथ लंदन जाती थी।
और भी दादी जब कहीं और ट्रैवल करते थे तो आप साथ में जाते थे?
हाँ, भारत में तो हमेशा मैं दादी के साथ होती थी। और उसमें भी कई बार ऐसी परिस्थिति भी आई कि मुझे कोर्स कराना भी नहीं आता था।
हाँ।
और दादी कहे कि तुम जाकर के क्लास कराओ।
हाँ।
क्योंकि दादी के साथ कभी भी ट्रैवलिंग पे जाते थे तो दादी यही कहती थी सभी पहले बोलो उसके बाद मैं बोलूँगी। तो बहुत हिचकिचाहट होती थी क्योंकि समझ में नहीं आता था कि बड़ों के सामने ज्ञान कैसे बोले। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि बेंगलोर में दादी मुझे कहती तुम जाकर के क्लास शुरू करो। और मैं तो गई क्लास में तो देखा 1000 की सभा है वहाँ।
हाँ।
और जिस व्यक्ति ने कभी कोर्स ही नहीं कराया हो वो ओरली क्लास कैसे कराएगा? लेकिन दादी को ना नहीं कर सकते थे कभी भी। दादी बहुत स्ट्रिक हुआ करती थी उन दिनों में। लेकिन फिर भी हमने जो ये 5 महीने दादी के साथ में रही थी, 85 में शुरुआत हुई रहने की, और उस समय दादी 5.5 मास मधुबन में रहे थे। फिर टूर पर गए थे तो वो मेरी एक अच्छी ट्रेनिंग भी हो गई थी।
तो दादी के साथ जब आप रहे तो दादी ने अपने भी अनुभव आपके साथ शेयर किए होंगे। दादी के बारे में ऑफ कोर्स जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो दादी के पास्ट के बारे में आपको क्या मतलब दादी ने कुछ शेयर किया कि दादी कैसे आए थे बाबा के ज्ञान में, बाद दादी कैसे निकले थे?
दादी को जब ज्ञान मिला तो दादी शादी नहीं करना चाहते थे। दादी को ब्रह्मा बाबा को देख करके एक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार भी हुआ था, तो दादी को शादी नहीं करनी थी। लेकिन पहले से तय हो चुका था तो इसीलिए दादी को जबरदस्ती शादी करवाई। हालांकि दादी ने अपने फादर को बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कि यदि कसाई हो तो मेरी शादी कराओ, लेकिन उस समय समाज के अंदर अपनी प्रेस्टीज की भी बात होती है
जी।
और बहुत ही डोमिनेटिंग समाज था उस समय, तो इसीलिए जबरदस्ती दादी की शादी कराई। लेकिन दादी की लगन तो ओम मंडली की तरफ थी। फिर दादी को मुरली,
दादी बंधन में थे ना, तो
बिल्कुल बंधन में थे दादी को, क्योंकि दादी क्या करती थी कि गीता के बीच में रख करके मुरली पढ़ती थी। तो उसका पति उसको मारता भी बहुत था माथे में, लेकिन फिर भी दादी की लगन और बढ़ती गई। और दादी को मुरली भी मिलती थी, प्लास्टिक में मुरली पैक करके, वो जो नाले में से पानी जाता है ना, तो वहां से दादी को मुरली मिलती थी, तो दादी बाथरूम से मुरली ले लेते थे।
अच्छा।
हाँ, तो बहुत लगन दादी की और मजबूत होती गई। और दादी अपनी मुरली को बहुत ही प्यार से पढ़ती थी।
कोई भी दादी को देख करके कह नहीं सकता कि इतने बंधन में और इतना परिश्रम करके।
लेकिन उस समय क्या है कि डोमिनेट संसार था, समाज जो डोमिनेट वाला था ना, कि बहनों का कुछ चलता ही नहीं था। तो बहुत ही दादी को मार खानी पड़ी है, माथे में ही मारता था दादी को। दादी सुनाती थी हम लोगों को कि बहुत सार कितना समय दादी को माथे में दर्द रहा, क्योंकि मार कहती हैं कि गीता पढ़ रही है या लेखराज को याद कर रही हो, ऐसा वो उसका पति बोलता था। फिर दादी ने ये भी बात सुनाई थी कि उसकी सांस ने शरीर छोड़ दिया, तो फिर दादी ने गहने भी उतार दिए और सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, तो और उसके पति को बहुत ही गुस्सा आता था। तो दादी कहती थी कि माँ जी ने शरीर छोड़ा है इसीलिए मैं यही कपड़े पहनूंगी, ऐसे करके दादी ने सफेद कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए थे युक्ति से।
तो दादी अभी इतनी बंधन में होकर के फिर मतलब बाबा के पास कैसे आए, मतलब जब पति का बंधन था, घर का इतना जोर था उनको कि वहाँ नहीं मिलने जाना है, तो कैसे दादी कर पाए, डिसाइड कैसे कर पाए कि मुझे बाबा के पास आना है।
एक दिन क्या हुआ कि दादी की शादी करने के बाद उसके फादर बैंकरप्ट हो गए।
हाँ।
और जैसे कि लक्ष्मी को धक्का मार करके भेज दिया हो, दादी यही बात कहती थी हम लोगों को। और फिर फैमिली सहित समर्पित हो गए, तो अब उसके फादर को रियलाइज हुआ कि अभी इनको भी कैसे हम लाएं, क्योंकि जब उन्होंने ज्ञान सुना जीवन इतनी अच्छी बनती है, तो उनसे उसके फादर को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो उसका फादर उसको मिलने आया था एक दिन, और उसके बाद उसकी बहन भी मिलने आई, तो बहन ने भी कुछ ऐसी बात बोल करके चली गई, तो दादी के दिल में बहुत जैसे लगा। तो एक बार दादी आधी रात को निकल करके जाती हैं, और उनको पता तो था कि ढूंढने के लिए आएंगे, लेकिन दादी ने बहुत होशियारी से पुलिस को भी इतला कर दिया था कि मेरे पीछे लड़के पड़े हैं कोई, तो मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से पुलिस की प्रोटेक्शन लेकर के दादी दूसरे स्टेशन से निकल गई।
अच्छा।
हाँ, क्योंकि उस समय बाबा कराची में थे, तो दादी दूसरे स्टेशन से निकल गई। और बाबा ने फैमिली को अलग रखा हुआ था, तो बाबा ने जब देखा कि दादी आ गई है,
तो दादी भाग करके आ गई।
हाँ, आधी रात को ट्रेन में चढ़ करके चली गई दादी।
मतलब कहाँ से?
हैदराबाद से कराची।
हैदराबाद सिंध से कराची आ गई।
हाँ। और फिर दादी फैमिली को बाबा ने जब अलग रखा था, तो बाबा ने दादी को यज्ञ में नहीं रखा, उसकी फैमिली के साथ रखा।
उनकी फैमिली कराची में रहती थी।
कराची में बाबा के साथ रहने आ गई ना। हाँ। समर्पित हो गई।
जी जी जी।
तो इसीलिए उनको जब भी फैमिली समर्पित होती थी, तो बाबा अलग रखते थे उन दिनों में। तो बाबा ने दादी को भी उसकी फैमिली के साथ रख दिया, क्योंकि बाबा को ये तो मालूम था कि उसका पति आएगा जरूर लेने के लिए, तो वो आया भी जरूर लेने के लिए। और दादी तो बहुत ही छोटे थे ना, पतले भी थे और कद के भी छोटे थे, तो उसको गोद में उठा करके चलना, उसका पति तो
हाँ जी,
तो फिर लेके जा रहे थे, लेकिन दादी ने अपने आप को कैसे छुड़ाया और घर में आकर के दरवाजा फिर बंद कर दिया। तो फिर वो भाई बहुत गुस्से में हुआ कि मैं दूसरी शादी करूंगा। दादी ने कहा जरूर करो।
तो इस तरीके से फिर दादी बाबा के पास
बाबा ने टेस्ट भी जरूर लिया है दादी की।
हाँ।
शुरू के दिनों में तो बाबा ने रखा नहीं दादी को अपने पास। और दादी एक बात और भी सुनाती रही हम लोगों को कि 1.5 साल दादी बाद में आए थे।
हाँ, ये बात भी हम जानना चाहते थे कि बहुत बार दादी ऐसा कहते थे कि मैं लेट आई हूँ, तो उसका क्या मीनिंग था?
लेट आई क्योंकि यज्ञ की स्थापना हो चुकी थी और 1.5 साल दादी को ये बंधन में काटना पड़ा, तो 1.5 साल के बाद दादी आई। तो दादी जब आई तो दादी ने बाबा से फिर पूछा कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं कि मैं इन्हों के साथ हो जाऊं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची मुरली जितनी बार पढ़ सकती हो उतनी बार पढ़ो। तो दादी हमेशा सुनाती रही कि 6 मास दादी ने खटिए पर नहीं सोया।
अच्छा।
बेंच हुआ करती थी स्कूल में, पहले बेंच होती थी, तो बेंच आगे में जो लिखने का होता था उस पर माथा रख करके दादी सो जाती थी, और जैसे ही आंख खुल जाती थी दादी मुरली पढ़ना शुरू करती थी। तो दादी को मुरली से बहुत बहुत प्यार रहा है, क्योंकि शुरू में दादी जब आई तो ज्ञान को अंडरस्टैंड करना और पुरुषार्थ करना।
तो आपने देखा कि ये कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग थी दादी के अंदर या फिर
ना? कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन लेट आने का जैसे कि एक रिग्रेट था, पश्चाताप था कि मैं लेट आई, क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे शादी करना।
जी जी,
उसी समय से यज्ञ में आना चाहते थे, लेकिन जो कर्म का अकाउंट्स था वो तो हर एक को चुकते करना ही पड़ता है।
तो आप भी जब इतने समय तक दादी के साथ रहे, तो कौन सा रिलेशन आपने दादी के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस किया, मतलब प्यार का या माँ की भासना या एक फ्रेंड का नेचर?
नहीं, शुरू में जब शुरू में मैं दादी के साथ रही तो दादी हमेशा ही एक जैसे कि टीचर के रूप में रही।
जी जी,
क्योंकि दादी कभी भी कोई भी बात कहनी होती थी तो आमने सामने नहीं कहते थे।
जी,
जो बात कहनी होती थी क्लास में ही कह देते थे।
ओके।
मेरा एक बार का अनुभव है कि दादी के साथ अभी 2-4 दिन ही हुए थे और गुरुवार का दिन आया, मेरा पहला गुरुवार था, मालपुआ और मूंग की दाल बनी थी।
जी,
तो दादी ने मुझे कहा तुमने भोजन किया, नाश्ता किया? मैंने कहा जी दादी किया। क्या खाया? तो मैंने कहा मालपुआ खाया। तो कहती है मूंग की दाल? तो मैंने मुंह बिगाड़ा, क्योंकि मूंग की दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो दादी कहती है देखो बाबा को भी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, क्या और दाल ले आएंगी मेरे लिए? तो हमने समझा कि अब दादी को अच्छी लगती है, तो मैं एक कटोरी भर के दाल ले आई। तो दादी को जब मैंने दिया तो उसमें से दादी ने एक चम्मच खाई और कहा कि अब ये दाल आप पूरी करो।
अच्छा।
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी दाल खाई नहीं थी। तो दादी कहती जब तक तुम्हें पूरा नहीं करेंगी मैं टेबल से उठेंगी नहीं। तो और तमाशा हो गया
जी।
क्योंकि पहले दादी को नाश्ता हम लोगों को कराना पड़ता था।
हाँ।
दोपहर का भोजन और रात का भोजन दादी बड़ी दादी के साथ करते थे
जी।
और दादी नाश्ता भी कहाँ करते थे? पांडव भवन में, जहाँ मधुबन निवासी भोजन करते हैं, वहाँ दादी नाश्ता करते थे। तो तमाशा हो गया, सब लोग देखने लगे कि क्या हो रहा है। दादी तो उठने का नाम ना लेवे। फिर मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने दाल को दवाई की तरह पी लिया। फिर दादी उठ करके गए, मैं बर्तन साफ करके फिर गई। शाम को दादी की क्लास थी। तो दादी क्लास में फिर मेंशन करती है राजकुमारी हो क्या, ये अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता है, अरे बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते। फिर तो दादी की लहर चलती है
जी,
लेकिन
जी।
हमें ही पता है कि दादी किसको कह रही है और उनको पता है कि वो किसको कह रही है, तो कई बातें दादी की क्लासेस से ही हमें समझ लेनी होती थी। क्योंकि शुरू के दिनों में दादी का माँ का स्वरूप नहीं था। हाँ, दादी बहुत ही ऑफिशियल रहती थी, क्योंकि कई बार तो मेरे को आदत नहीं थी इतना ऑफिशियल स्वरूप देखने की, क्योंकि मैं सीधा घर से आई थी, सेंटर पर भी नहीं रही थी, तो मेरे लिए तो बहुत चैलेंज की बात थी दादी के लिए, दादी के साथ रहने का। फिर जब मैंने देखा कि दादी दो तीन दिन तक बहुत ऑफिशियल रहती थी, तो मैं फिर दादी को कहती थी, दादी आप थोड़ा स्माइल तो करो, आप नॉर्मल हो जाओ ना, मेरे को आपका डर लगता है। तो दादी सोचती थी कि आज तक ऐसी कोई लड़की मुझे मिली नहीं है जो ऐसा कहने वाली
जी,
हो।
बिल्कुल बिल्कुल।
और मैं बहुत छोटी थी, ऐसे भी नहीं, मैं बड़ी थी, 21 साल की थी तब। और मैं दादी को ऐसा कह देती थी, फिर दादी को लगा कि नॉर्मल होना बहुत जरूरी है।
तो जैसे दादी जब भारत में आते थे तो डेफिनेटली आपने तो तब देखा, लेकिन जब आप लंदन गए दादी के साथ, तो वहाँ आपने कैसी पालना देखी दादी की? डिफरेंट थी, इंडिया से अलग थी या सेम थी? क्या डिफरेंस आपको लगा कि वहाँ दादी अलग थे या सेम थे सबके साथ?
क्या था लंदन में, दादी खुद किंग थी
जी,
क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे किंग हैं इंडिया में, मधुबन में
जी,
भी
जी, बिल्कुल।
लेकिन वहाँ तो खुद की किंगडम है
जी।
तो दादी का वहाँ पालना का रूप बहुत डिफरेंट था। और यहाँ क्या था कि बड़ी दादी थे ना
जी,
तो इसीलिए भी दादी अपने को पीछे रखते थे
जी।
लेकिन वहाँ तो खुद दादी ही थे
जी।
तो मैंने क्या देखा कि दादी ने जो लंदन में पालना दी है, वो जैसे कि प्रिंस प्रिंसेस को पालना दी जाती है, इस प्रकार से दादी ने सबको पालना दी है। छोटा परिवार भी था, मधुबन की कंपैरिजन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन छोटा परिवार था। और दादी को यही था कि ये कन्याओं को अगर यहाँ पालना नहीं मिलेगी तो इनका बुद्धि योग बाहर जाएगा
जी।
क्योंकि वहाँ भौतिक सुख साधन तो बहुत हैं।
तो दादी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी आप?
मेहनत के बजाय दादी को बहुत पालना का अटेंशन देना पड़ता था वहाँ, बहुत पालना और भरपूर रखती थी दादी सबको। और ज्ञान योग में भी हमने क्या देखा कि किचन संभालने वाली बहन, नाश्ता उसको बनाना है तो क्लास से पहले नाश्ता बना लो, लेकिन क्लास में जरूर आना है
जी,
मुरली जरूर सुननी है, अमृत वेला जरूर करना, क्योंकि दादी खुद आकर के बैठते थे
जी।
तो मैं नहीं समझती हूँ कि एक डर, लेकिन दादी ने एक भावना पैदा की थी क्लास के प्रति और अमृत वेले के प्रति। तो सारे एक अटेंशन से आकर के क्लास करते थे और दादी स्वयं मुरली सुनाते, जब तक दादी वहाँ थे तो दादी ही मुरली सुनाते थे
जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा जी, प्रवीणा बहन आपका, क्योंकि हम यहाँ आपको छोड़ेंगे नहीं, हम अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत बातें जानेंगे दादी जी के बारे में
जी।
आपका बहुत बहुत थैंक्स हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। दर्शकों, जैसे आपने देखा, आपने सुना कि दादी जी ने किस प्रकार से संघर्ष करके अपने लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में कितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा के साथ जोड़ के कितनी मेहनत करके जो पुरुषार्थ किया, उसका नतीजा है जो आप देखा कि दादी जी का व्यक्तित्व इतना तेजस्वी, इतना महान व्यक्तित्व, तो वो हम सब भी कर सकते हैं। और यहाँ तो हम देखते हैं कि दादी जी ने हर एक को अपने जैसा बनाया। हम भी आज जैसे प्रवीणा बहन से सुन रहे थे, तो उनसे दादी जी की भावना और पालना की भावना हमको मिलती है। तो हम ऐसे ही दादी जी के और भी अनुभव सुनते रहेंगे प्रवीणा बहन से अपने अगले एपिसोड में। आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी देखना ना भूलिए। ओम शांति, नमस्कार।